Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 478.
December 5, year 2000, by wise in Manjum of Chana of Chicago. Ya Ali Madad. خوش نصیب ہوں جماعت خانے میں آیا تو امام کے فرمان پڑھے جاتے تھے مولانا حضرت امام نے ہم لوگوں کے اوپر جو رحم و کرم کیے ہوئے ہیں اس کی کوئی مثال ہسٹری میں نہیں ہے چار چار سلطان محمد شاہ دتار کا زمانہ میں نے دیکھا حضور میں رہا متزالی سے لے کے آج تک میں ہسٹری پڑھی ان بزرگوں کو بھی ملا کہ جن بزرگوں نے علی شاہ سن علی شاہ کا وارہ دیکھا تھا لیکن دین دارو میں نے دیکھا کہ علی سے لے کے سلطان محمد شاہ دتار تک جتنے بھی اماموں نے جماعتوں کو دعائیں دی ہیں بخشش دی ہیں ان سب کو اکٹھا کرو تو اس جامے میں جو دعائیں دے رہا ہے وہ 48 جامے میں نہیں ملی اتنی دعائیں اس نے شروع کی ہیں جو کہ جب تخت نشین ہوا اس وقت یہ بات نہیں تھی سلور جوبلی کے بعد یہ بات شروع ہوئی سلور جوبلی ہوئی 82 میں 83 میں میں ایک دن بیٹھا تھا سوچ رہا تھا کہ یہ ہوگا تیری اس قدر مہربانیاں ہو رہی ہیں کوئی ریزن ہے ریزن یہ ہے جو گنانوں میں سے سمجھ آتا ہے وہ سمجھ یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا کے اندر گناہ بڑھتے جائیں گے جیسے جیسے مذہب کمزور ہوتا جائے گا جیسے جیسے شیطان کا زور بڑھتا جائے گا اس کی دعائیں بڑھتی جائیں گی تاکہ اپنے بچوں کو اپنی جماعت کو بچا سکے دعائیں دیتا ہے آپ نے سنا ابھی لیکن جو لوگ پاکستان گئے اور واپس آئے ان کی باتیں سن کے بھی سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ امام دعائیں دیتا ہے ریپیٹڈ دعائیں دیتا ہے نیچے اتر جاتا ہے پھر واپس آتا ہے دعائیں دیتا ہے پھر چلے جاتا ہے دروازے تک جا کے پھر واپس آتا ہے پھر دعائیں دیتا ہے کوئی کارن ہے کوئی ریزن ہے ریزن یہی ہے کہ چاروں طرف زمانے کے اندر جو یہ زمانہ ہم اس وقت پسار کر رہے ہیں پیروں نے اس زمانے کو آج پڑتار ویلا کہا ہے آج پڑتار ویلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاری ہوا زمانہ इस वक्त हम कलयुग के अंदर हैं, कलयुग शुरू हुआ है, 7200 बरस हुए हैं कलयुग को, और कलयुग का टोटल जितना भी टाइम है वो 4,32,000 बरस का है। लेकिन 4,32,000 बरस में कैसे आखिर के जो 3,00,000 बरस है वो निकल जाओ, क्योंकि उन 3,00,000 बरसों में जमीन के ऊपर लाइफ नहीं होगी। और ये जो अभी का जमाना और खासतौर पर ये सदी जो है, ये बहुत खराब सदी है। जब से दुनिया बनी है या जब से इंसान को इसका इल्म मिला है या हिस्ट्री लिखी गई, हमें वो चीज अपने गिनानों में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती, न हदीसों में न कुरान में। मगर जो कुछ भी इशारे हदीसों और कुरान के अंदर या वेदों में, तौरात और ज़बूर में, इंजील में मिले, इन तमाम को एक जूसर के अंदर डाल के पीरों ने उसका जूस निकाला, और वो जूस है गिनान। गिनानों के अंदर जो इल्म है वो कहीं नहीं। मेरी सारी जिंदगी गिनानों के अंदर गुजरी, और आज भी मैं यही कह सकता हूं कि मैं 1% भी नहीं जानता। मैं अभी 81 वर्ष का हूं, 11 साल की उम्र से मैंने इल्म हासिल करना शुरू किया, आज इसको 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैं 1% भी दावा नहीं करता, 1% भी नहीं। मगर जो 1% में मिला वो इस कदर ज्यादा है कि मैं उसको हजम नहीं कर सकता। इसलिए मैं बहुत सी चीजें जमातों में बोल रहा हूं, कितने वर्ष जीऊं या मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम 50-100 वर्ष तक ये बातें चलेंगी, जरूर चलेंगी। और पीरों के कहे हुए वो चीजें जो आज इमाम के मुंह मुबारक से निकलती हैं, आशीष दुआ और चीज है, आशीष और चीज है। आशीष कहते हैं दिल के जज्बात, जैसे कि एक मां अपने बच्चे को वो विदा कर रही है यूनिवर्सिटी जाने के लिए या दूसरे मुल्क के सफर के लिए, तो मां दुआएं जरूर देती है, मगर उस मां के दिल में से जो आशीष निकलती है, जो मोहब्बत के जज्बात निकलते हैं, वो आशीष है। और आज इमाम इस तरह हमें मोहब्बत भरे अल्फाज में दुआएं दे रहा है। फिर कहते हैं ये जमाना आहिस्ता 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 बिगड़ता जाएगा, ये सदी आखिरी सदी है जमाने के बिगाड़ की। इंशाअल्लाह इस सदी के खत्म होने के बाद कुछ और अरसा निकल जाएगा, हो सकता है 20-25 वर्ष और भी निकल जाए, दुनिया के अंदर सुकून हो जाएगा, सुख हो जाएगा, शांति हो जाएगी और बिल्कुल अमान हो जाएगा। यहां तक कि पीर बोलते हैं कि कोई शिकरा किसी चिड़िया को नहीं मारेगा, और शेर और बकरी एक साथ घास खाते होंगे, बकरी और वो कुछ और खाता होगा, लेकिन शेर बकरी को नहीं मारेगा। ये एक निशानियां दी हैं पीरों ने कि सुख हो जाएगा। और पीर कहते हैं कि 1,25,000 बरस तक, 125,000 ईयर्स तक ऋखियों राज करे। ऋखियों का मतलब खुदा ताला को मानने वाले मोमन राज करेंगे। राज करने का मकसद सुख मिलेगा, राज करने का मतलब है जो मांगेंगे मिलेगा, राज करने का मतलब है कि गुनाह नहीं होंगे, राज करने का मतलब यह है कि बीमारियां बलाएं नहीं होंगी। और यह हकीकत है, वो जमाना बहुत नजदीक है, 100-125 साल। मगर ये जो सदी आज हम पसार कर रहे हैं, मैं जमातों को वार्निंग दे रहा हूं 10 बरस। मुझे याद है अच्छी तरह कालगरी की मेरी एक आवाज के अंदर मैंने जब ये जिक्र किया, तकरीबन 1.5-2 घंटे की मेरी आवाज है, मैंने गिनानों में से ये चीज बख्शी, बोला कि फरमान से जो मुझे मिली बख्शिश मिली, मैंने जमात के सामने शेयर की। आज से 10 बरस पहले मैंने कैलगरी के अंदर अरस की जमात को कि जो वक्त हम पसार कर रहे हैं आने वाले 60 70 80 के 100 बरस बहुत बुरे हैं, गुनाह बढ़ जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, क्राइम बढ़ता रहेगा, बदियां बढ़ती रहेंगी, बलाएं आफतें बढ़ती रहेंगी, जलजले बढ़ते रहेंगे, वबाएं और बीमारियां बढ़ती रहेंगी। आज से 10 बरस पहले जो था आज उससे ज्यादा खराब हो चुका, आने वाले 10 बरस में और भी खराब हो जाएगा। न शर्म रहेगी, न हया रहेगी, न मोहब्बत रहेगी, न किसी के दिल के अंदर रहम रहेगा। दुनिया में 100% बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि जो मोमिनीन हैं वो तो जरूर रहेंगे, और उन मोमिनों की दुआओं की वजह से बहुत सी आफतें दूर रहेंगी। ये कहते हैं ऐसा वक्त आएगा कि जहर की तरह कड़वा होगा, और संस्कृत में जहर को कहते हैं विष, और यानी उसको बिगड़ी जबान के अंदर हमारे गिनानों में है विख, विख कहते हैं जहर को, विखड़ी बेड़ा माए दिल छोड़ना रहसे जी, समीरा जो रख से तेनू रहसे जी, विखड़ी वेला, जहर जैसी कड़वी घड़ियां। जहर का इसलिए नाम दिया कि जहर माल डालती है, जहर कड़वी है, और जहर का टाइम इसलिए पीरों ने विखड़ी वेला लगा के पीर ने कमाल किया है कि जिस तरह जहर खाने से आदमी मर जाता है, जिंदगी मर जाती है, ऐसा वक्त आएगा कि ईमान मर जाएगा, जिंदगी के एम मर जाएंगे, दिल ठोर नहीं रह सकते, दिल ठिकाने नहीं रहेगा। मोमिनों में आज फील कर रहा हूं 25 बरस से यहां नॉर्थ अमेरिका के अंदर कि जो डिप्रेशन है ना, खासतौर पे औरतों के अंदर, मेरी रिपोर्ट यह है कि डिप्रेशन बढ़ रही है। डिप्रेशन इधर बहुत से डॉक्टर्स हैं, औरतों में भी मर्दों में भी। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन में एक किस्म का खौफ होता है, डिप्रेशन में एक किस्म का डर पैदा होता है, डिप्रेशन में एक ऐसा इंप्रेशन होता है मेरा कोई नहीं। डिप्रेशन यह है कि वो आदमी अपने आप को टूटा हुआ समझता है, जैसे हथौड़ियां लेके हम लकड़ी कांच को तोड़ देते हैं, वो आदमी अपने दिमागी हालत के अंदर अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है, नाउमीद हो जाता है, होपलेस बन जाता है। अगर डिप्रेशन बिगड़ जाती है तो मरने का जी चाहता है। देखो वो विखड़ी वेला का जो नाम दिया पीर ने कि ऐसा जहर से भरा हुआ वक्त आएगा कि वो आदमी ऐसा समझेगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी, मैं रहने के लायक नहीं। ये चीजें हमारी जमात में बढ़ रही हैं, सोसाइटी में बढ़ रही हैं। डिप्रेशन के केसेस इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि ईमान कमजोर है, अल्लाह का भरोसा निकल गया है, क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, बिल्कुल अकेला। डिप्रेशन का इलाज क्या? अगर ऐसा कोई आदमी या औरत है कि जिसको डिप्रेशन हो चुकी है, उसको मोहब्बत का यकीन दिलाओ, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तो फिक्र मत कर। उसको ये यकीन बहुत दो, एक दो दफा बोलने से नहीं, महीनों तक उसको ये यकीन दिलाते रहो, उसकी डिप्रेशन इंशाल्लाह घटती जाएगी। ये वो हालत है जब इंसान का ईमान बिगड़ जाने से या इंसान के ऊपर कमजोरियां पैदा हो जाने से आदमी की हालत ऐसी बन जाती है। ये तो एक फेज है खाली, ये सिर्फ एक साइड है कि इंसानों को डिप्रेशन पड़ेगी, मगर ऐसे बहुत सी चीजें आ जाएंगी। पीरों के कहने के हिसाब से गुनाह बहुत बढ़ जाएंगे। एक दफा कागज पेंसिल लेके बैठा, मुझे ये देखना था, जानना था कि भला कितनी परसेंटेज बनाई है हमारे पीरों ने। उस जमाने के अंदर परसेंटेज का अकाउंट नहीं होता था, मगर जो अकाउंट करते थे तो 20 तक अकाउंट करते थे, 100 तक नहीं, 20 तक। कितने 20 भाई? 2 20, 2.5 20, यानी 50। तो 20 का अकाउंट होता था। तो गुरु पीर सदर दिन माँ बाप ने 20 का अकाउंट किया। फिर सदर दिन कहते हैं कि इतना जमाना बिगड़ जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा कि इमाम मेहदी के जहूर से पहले 20 में से साढ़े उन्नीस आदमी बेईमान होंगे, 20 में से 19.5 हिस्से दुनिया में बदियां होंगी। अब मैंने अकाउंट निकाला तो आप तो जानते हो, अभी 2.5% हुए। 20 में जो आधा परसेंट हुआ तो वर्ष 20 में से आधा हिस्सा 100 के अंदर 5 गुना 2.5% हुए। वो सिर्फ 2.5% मोमन होंगे, सिर्फ 2.5% लोगों के दिलों में सुख शांति होगी, 97% लोग बेईमान होंगे। मेरा कलाम नहीं है, मैं तो निकाल के आपके सामने पेश कर रहा हूं। 97.5% दुनिया में बदियां होंगी, बुराइयां होंगी, आफतें होंगी, गुनाह होंगे। तमाम आसमानी जमीनी ताकतें इंसान को मिटाने के करीब होंगी। लेकिन पीरों ने और भी कुछ कहा है, बहुत से निशानियां दी हैं। 2-3 वीक पहले मैंने ह्यूस्टन में यह बात की। मैं ह्यूस्टन आया 27 अक्टूबर को, उसी वीक का मुझे टाइम मैगजीन मिला। मैं पी सदर जी मां बाप को सलाम करता हूं। टाइम मैगजीन के टाइटल पेज पे अर्ली पुबर्टी क्या है कि 8-9 बरस की लड़कियों को पुबर्टी शुरू हो जाएगी, 9 बरस की लड़की बच्चा पैदा करेगी। हमारे गिनान हम रोज पढ़ते हैं, 9 वर्ष नी नारी फर्श है, 12 वर्ष में पुरुष। 600 वर्ष पहले की आज बात आज हमारे सामने है। टाइम मैगजीन ने 4 पेज के ऊपर जो रिपोर्ट भेजी है तो वो कहता है कि व्हाइट लोगों के अंदर 27% लड़के लड़कियां वो अपने वक्त से पहले जवान हो रहे हैं। 9 बरस की औरत हो जाएगी, 12 बरस का बाप बन जाएगा। और इसके पीछे इसका कहना, टाइम का कहना यह है कि जो जेनेटिक प्रोसेस के अंदर आज इस वक्त साइंस इसके पीछे लगी हुई है, जेनेटिक स्टडीज के अंदर, इसमें हमारा खाना पीना, हमारा ख्याल, हमारे विचार वगैरह जो हैं, रात दिन हम टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, बदियों बुराइयों से भरे हुए हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में असर करती हैं। और इन चीजों की वजह से हमारे अंदर जो जीन्स हैं और दूसरा मेटाबॉलिज्म है वो सब फिर फर्क हो रहा है। हम जल्दी जवान हो रहे हैं। आज 5 बरस का बच्चा जो बातें जानता है, मेरी उम्र के 15 बरस के बच्चे को भी ये पता नहीं था कि आज 5 बरस के बच्चे को पता है, फिजिकली भी, मेंटली भी और एजुकेशनली भी। जमाना बहुत फास्ट जा रहा है। आग की बारिश हो रही है, यहां आग से मेरा मतलब गुनाह है, गुनाहों की बारिश हो रही है। जिधर जाओ आपको आग नजर आएगी, हमारे चारों तरफ आग ही आग है, गुनाहों की आग, शैतान की आग, कलयुग की आग। इसमें बचने का एक ही रास्ता है, मौला का जो छतर है, छतरी छोटी होती है, मैं बड़ा कहता हूं, मौला का जो छतर है उसके नीचे छुप जाओ, और कोई रास्ता बचने का नहीं, कोई नहीं। और अपने लिए, अपनी औलाद के लिए हर रोज दुआएं मांगो, सुबह भी मांगो, दोपहर को भी मांगो, रात को भी मांगो, और कोई रास्ता नहीं है इसमें से बचने का। और इसी वजह से मैंने आपको शुरू में कहा कि ये मेरे मौला की मेहरबानियां, बख्शीशें बढ़ रही हैं। जो जो बच्चा कर्जे में फंसता जाता है, बाप उसको पैसे दे रहा है कि तू कर्जे के अंदर नुकसानी में जिंदगी न गुजार, ये हमको अपनी रहमतें दे रहा है। और जहां भी जाओ, आज लगभग मौला के इस जौमे को 43 बरस हुए हैं दीनदारों, इन 43 बरसों के अंदर उसने कोई फरमान ऐसा नहीं बाकी रखा कि जिसमें उसने ये रिपीट करके नहीं कहा, जमात खाने रोज आओ। अभी भी पाकिस्तान में देखो तो उसने जमात खाने को ही याद किया, जमात खाने रोज आओ। ऐसा नहीं कहता जमात खाने रोज जाओ, सर ऐसा नहीं बोलते, जमात खाने रोज आओ, इसमें फर्क है। सब बोले कि ऐसा नहीं कहते कि गो टू जमात खाना, सब बोलते कम टू जमात खाना, क्योंकि जमात खाना उसका घर, वो जमात खाने में बैठा हुआ है, वो अपने घर पे बुला रहा है, घर पे आओ तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, मैं तुम्हारे पांव धुलाऊं, मैं तुम्हारे बालों में कंघी करूं और अपनी गोद में तुम्हें दूध पिला के सुला दूं, आओ जमात खाने। ये जमात खाना उसका है, ये जमात खाना बहिष्ट है, ये जमात खाना पनाह की जगह है, ये जमात खाना बुरों से बचाने की जगह है। आफते बलाएं जमात खाने के अंदर नहीं आती, हमारे दिल बुरे हो जाते हैं, मगर जमात खाने आने से हमें वो बरकतें मिलती हैं कि जिसके हम लायक नहीं भी हैं तो भी मिलती हैं। हे मोमिनों, जितने भी इमामों ने जमात खाने की बातें की हैं, और उस वक्त के जब हमारा अरबी टाइम था यानी कि फातिमी पीरियड था उस जमाने में और उसके भी पहले, तो उस वक्त जमात खाने के नाम नहीं थे, मस्जिद भी थी, दरगाहें भी थी। उन जमाने के अंदर हमारा ये तरीका जारी था। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका जारी किया, बल्कि इसके भी पहले था। मैं तो ये बोलता हूं कि इस्माइली तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4000 साल पहले जारी किया, आज मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता, लेकिन नबी करीम के जमाने के अंदर मेरी आवाजों में है ये चीज मौजूद। थोड़ा पानी चाहिए। मौलाना हजर इमाम के फरमानों में से ये चीजें भी हमें मिलती हैं, इमामों के फरमानों से भी मिलती हैं। नबी करीम के हुजूर में देखो, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत सी बातें जानते हैं, अरबों को मुसलमान बनाया है, अरबों को मुसलमान बनाया। अल्लाह कहता है ए मोहम्मद, इन अरबों को कहो तुमने इस्लाम कबूल किया है लेकिन अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान उतरा नहीं। अल्लाह का कलाम है। ए मोहम्मद, इन अरबों को कह दे कि तुमने इस्लाम को कबूल किया है लेकिन अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा। और हिस्ट्री हमारे सामने है। हज़रत इमाम भी बहुत दफा कहते हैं कि अपनी हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री हमारे सामने है, हिस्ट्री पढ़ो दीनदारों, आपके कान खड़े हो जाएंगे। नबी का एक 10 बरस तक पर्सनल सेक्रेटरी रहा हजरत अनस बिन मालिक, और सुनी लोग उसकी बड़ी तौकीर करते हैं। मैंने इसलिए नाम दिया, उसके सुनी लोग उसकी बहुत तौकीर करते हैं। मुतजाली के जमाने के अंदर मुतजाली मेंबर पे बैठे हैं, वाज फरमा रहे हैं, गदीर खुम का जिक्र किया मौला मुतजाली ने, और उस वक्त अनस बैठा था। मौला कहते हैं ऐ अनस, तू वहां मौजूद था, तू बोल ये बात सच है कि नहीं, यानी गदीर का जो वाकया है वो सच है कि नहीं, क्योंकि बयत करने वालों में ये भी था। तो कहते हैं या अली, मुझे याद नहीं। अब ये उसने झूठ बोला। मुतजाली फरमाया आय अनस, वल्ला तुम झूठ बोल रहे हो, अंधे हो जाओगे। और 15 दिन में अंधा हो गया अनस बिन मालिक। 10 बरस उसने नबी की खिदमत की है एक सेक्रेटरी के तौर पे। हुजूर अपने फरामीन और दूसरी चीजें लिखवाया करते थे। अब एक और बात इधर बीच में आ गई तो वो भी सुना दूं। एक दिन अनस बाजू की कोठड़ी में नमाज पढ़ रहा था और हुजूर सरकार سرکار مدینہ بازو کے کمرے میں بیٹھے کچھ لوگ اور بھی تھے. سرکار نے آواز لگائی, انس, اب وہ نماز پڑھ رہا ہے. جواب نہیں دیا. انس, آپ کی آواز تھوڑی بلند ہوئی. جواب نہیں دیا. یا ابن مالک, زور سے چلائے حضور, اے مالک کے بیٹے. پھر بھی جواب نہ دیا. نبی کریم کو ذرا دنیا کے حساب غصہ آ گیا. حضور اٹھے, جب اٹھے اور ایسا جھانک کے دیکھا تو اس کے دعا مانگ رہا تھا, سلام کر لی, اس کے بعد دعا مانگ رہا تھا, پھر بھی ایسا آنکھیں کر کے نبی کو دیکھا تو حضور کہتے ہیں, جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہتے, یا نبی, میں نماز پڑھ رہا تھا. کس نے کہا تم نماز پڑھنے کے لیے؟ کہتے, آپ نے کہا تو پھر میں تمہیں بلا رہا ہوں, کیوں نہیں آتے؟ تو کہا, یا نبی, آپ مجھے بلائیں تو میں نماز چھوڑ دوں. فرمایا, ہاں, میرا حکم اس سے اونچا ہے کہ تو نماز پڑھے. بڑی حقیقت ہے اس میں. نماز سے نبی کا فرمان اونچا ہے. ہماری دعا حضرت امام کے فرمان سے پڑھی جاتی ہے, لیکن حضرت امام کا فرمان ہر شے سے اونچا ہے. تو انس بن مالک, رسول اکرم کی وفات ہوئی, جمعرات کا دن تھا. انس کی یہ رپورٹ ہے اور حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے. انس کہتے ہیں, جو ہی رسول پاک نے آنکھیں بند کی, ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. مسلمانوں کے اندر جو یکجہتی تھی, جو یونٹی تھی, وہ سپرفلوس تھی. سپرفلوس کیا اس کو کہتے ہیں؟ کہ اوپر جھاگ آ گئی تھی, حقیقت نہیں تھی. نبی کے زمانے کے اندر بھی مسلمانوں کے دل جدا تھے, لیکن پولیٹیکلی اس کا دبدبا ایسا تھا رسول کا کہ سب یونٹی میں تھے. جو ہی حضور نے آنکھیں بند کی, وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل جدا ہو گئے. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان تمام مسلمانوں کو نبی نے اسلام دیا اور اللہ کہتا ہے انہوں نے اس کو قبول کیا, لیکن ایمان اور چیز ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, ٹھیک, یہ اسلام ہم نے قبول کیا, مگر ایمان, ایمان کچھ اور چیز ہے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان محبت کے اوپر نبھر ہوا ہے. میں رسول اللہ سے جواب مانگتا ہوں کہ یا نبی, ایمان کیا ہے؟ کسی نے پوچھا, نبی کہا ہے کہ حب علی ایمان, حب علی کی محبت ایمان ہے. مذاق ہے. کوزے میں دریا بند کر دیا. ایمان کیا ہے؟ حب علی ایمان. پھر حضور کہتے ہیں, بغض ہو کفر و نفاق. بغض ہو یعنی علی سے نفرت کفر ہے اور نفاق ہے. نفاق کہتے ہیں کہ جہاں محبت ٹوٹ جائے, یونٹی ٹوٹ جائے. ایسی اچھی حدیث ہے. حب علی ایمان, علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. یہ چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے. میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ رسول اللہ نے جب اسلام پھیلایا اور آگ کی طرح اسلام پھیلتا رہا, ایک دن حضرت سلیمان نبی کے پاس آئے. سلیمان فارسی, رپورٹوں کے حساب سے 253 ایئرز کی ایج تھی. سلیمان فارسی 253 سال جیے. فارس کے رہنے, ایران کے رہنے والے تھے. تو ایک دن نبی کے پاس آ کے کہنے لگے, یا نبی, آج کچھ روحانی بات بتائیں. حضور فرمایا, علی کے پاس جاؤ اور کہو, میرا نام لینا, کہو نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے मैं आपसे कुछ सवाल मांगता हूं जवाब। जब अली तैयार हो जाए तो पूछना कि या अली, रसूलुल्लाह को मेराज में क्या मिला? कितनी अच्छी बात है। सुलेमान मौला के पास गया, सब बातें बताई। जब मौला तैयार हुए तो कहने लगा, या अली, नबी को मेराज में क्या मिला? सीने मुबारक पे हाथ रख के, मुंह से बोले कुछ नहीं, सीने पे हाथ रख के, यानी मैं मिला उसको। और यह तो बड़ी मशहूर चीज है कि रसूलुल्लाह जब मेराज पे गए, सुन्नी भी इस बात को कबूल करते हैं कि अल्लाह ने अली के लहजे में मोहम्मद से बातें की, गुफ्तगू की। शिया तो हर मानते हैं, लेकिन सुन्नी भी ये बात मानते हैं कि अल्लाह ने नबी के साथ बातें की तो अली के लहजे में, अली की आवाज में बात की। और इनकी किताबों में, शिया मजहब की किताबें, यानी यूं लिखा है कि जब हुजूर अर्शुल अजीम पर गए कि जिसके पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े रह गए कि या नबी, इसके आगे मेरी तौफीक नहीं, और जब हुजूर गए और पर्दा उठाया तो ये शिया की किताबों में यूं लिखा है कि वहां हजरत अली बैठे हुए दुआ मांग रहे थे। हम तो कुछ और समझते। तो सुलेमान दंग रह गया, हालांकि सुलेमान के दिल के अंदर अली की मोहब्बत थी। और वो भी एक वाकया ऐसा समझने जैसा, भले सुन लो। मुर्तजा अली 10-12 साल के थे, सुलेमान अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर ने अपनी नबूवत का इजहार कर दिया था, 1.5 साल हो गया था और सख्तियां हो रही थी। अभी ये कुछ 10-12 साल के, और उस वक्त वो भी तकरीबन 200-250 साल की उम्र थी उसकी, उस वक्त बूढ़ा बुजुर्ग था। और वो जमाना, और वो भी फारस की तहजीब, तो जो बुजुर्ग होते हैं वो मंजिला पैगंबर होते हैं, इसीलिए उनका बुजुर्ग नाम फारसी जबान में रखा गया है। अल्लाह ताला खुद बुजुर्ग है, बूढ़ा नहीं, बुजुर्ग। बुजुर्ग कहते हैं कि जो बहुत इज्जत वाले, इल्म वाले होते हैं। मुर्तजाली घोड़े पे चले आते हैं, सुलेमान फारस पांव से चले जा रहे हैं। तहजीब यह कहती है कि ये बच्चा 10-12 साल का नीचे उतरे घोड़े से और इस बुजुर्ग को सलाम करे, लेकिन मुर्तजाली घोड़े पे बैठे रहे और सुलेमान को सलाम किया। उसको बहुत बुरा महसूस हुआ, रह न सका। कह दिया, कहते हैं अली, मैं बुजुर्ग हूं, तुम्हें इतना भी ख्याल ना आया, मेरी बुजुर्गी का भी ख्याल ना किया। मुर्तजा अली घोड़े में बैठे रहे, हंसते रहे। उसको और भी बुरा महसूस हुआ कि इसको मैंने कहा फिर भी ये माना नहीं। मौला कहते, सुलेमान तेरी कितनी उम्र है? और उस जमाने के अंदर जो उसकी उम्र थी 200-250 के करीब, तो कहा कि मेरी इतनी उम्र है। बोला, कहते हैं 150 बरस पहले तुझे याद है, तू जवान था और तुम फारान के जंगल में, फारान इलाका है, फारान के जंगल में से तू निकल रहा था, यहां जाकर एक शेर बबर तेरे सामने आके खड़ा हो गया, तो तेरी घिघी बंद गई। को ये याद आ रहा था। हां याली, मुझे याद है। क्या हुआ फिर, क्या हुआ? कहते हैं, याली मैं बहुत परेशान हो गया, मेरी अक्ल गुम हो गई, मुझे महसूस ना हुआ कि मैं कुछ कर सकूं, जान के लाले पड़ गए। यकायक 10-12 बरस का एक लड़का उधर से आया और उसने शेर को ललकारा, शेर मुंह नीचा करके चला गया, मैं बच गया। सुलेमान फिर क्या हुआ? कहते याली, जब मुझे थोड़ी देर के बाद होश आया तो मैं शुक्रिया अदा करने के लिए, कुछ नहीं था मेरे पास लेकिन जंगल में से कुछ फूल मैंने इकट्ठे किए और उसका एक गुलदस्ता बनाया और मैंने उस बच्चे को दिया कि मेरी शुक्रगुजारी के अंदर ये तू कबूल कर। मुर्तजादी ने ऐसा हाथ डाला जब्बे में और वो गुलदस्ता निकाल के कहा, ऐ सुलेमान क्या ये वो गुलदस्ता है? अब तो सुलेमान की सब कुछ गुम हो गया। 150 बरस पहले इस 10-12 बरस के बच्चे के पास से मेरा दिया हुआ वो गुलदस्ता, उसके अंदर की आंखें खुल गई, फौरन जमींदोज हो गया, सजदा किया, जमीन पे सिर रख दिया। उस दिन के बाद इसको पता लगा कि अली कौन है। तो इस अली के पास जाके जब उसको पता लगा तो उसने वो जो पहले चीज देखी थी, गुलदस्ता देखा 150 बरस पुराना, और अब जो उंगली अपने सीने मुबारक पर रख के मुतजारी कहते हैं तो उसके अंदर की खिड़कियां खुल गई। कुछ अरसा हुआ, अबू जर गफारी वो मुर्तजाली के आशिक थे, उसने बड़े दुख उठाए हैं लेकिन सच्चा आदमी था। ये वो अबू जर है कि जिसका मैंने कभी जिक्र किया है, 50 नमाजें रोज पढ़ता था वो पत्थर की सील के ऊपर और उसमें खड़े पड़ गए और दिल के अंदर जरा महसूस किया, कहते या नबी मैं 50 नमाजें रोज पढ़ता हूं। हुजूर का मुंह उतर गया, कहने लगे मुझे वही उतरी है कि कह दे तेरे दोस्त को तू 50 नमाजें रोज पढ़ता है लेकिन हमारे दरबार में एक भी कबूल नहीं। अबू जर रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा या हजरत अल्लाह को कहो तू मेरी नमाजें कबूल करे ना करे मैं तो पढ़ूंगा, ये वो अपना काम करे मैं अपना काम करता हूं। तो फिर वो एक फरिश्ता कहते कान में, इसको कह दो अगर हमारे ऊपर तुमने ऐसा रख दिया है तो वल्ला एक नमाज के बदले में 50 नमाजें कबूल है, ये वो अबूजर है। एक दिन आया अकेला, सब लोग जब चले गए कहते या नबी हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, आपका दीदार करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, क्या इसके अलावा भी और कुछ है इस्लाम में? हुज़ूर ने कहा है। इस तरह मैं जरा शॉर्ट कर रहा हूं चीजों को, मुझे बहुत कुछ कहना है। इस तरह दीनदारों 40 आदमी यके बाद दिगरे नबी के पास आके इस बात में पूछते थे कि या नबी ये नमाज रोजों के अलावा भी कुछ है? तो नबी ने फिर इनको इकट्ठा किया और रेगुलरली इकट्ठा होते थे और इनको बैतुल ख्याल की, बैतुल ख्याल की इबादत सिखाई। हमारा ये तरीका इस तरह से उधर से चला आया और इस तरीके के ऊपर हमेशा रहमतें उतरती रही, इस तरीके के ऊपर बड़े बड़े जुल्म भी हुए लेकिन मिटा न सके। इस तरीके को तो ठीक लेकिन इस तरीके के मालिक को, हमारे इमामों को खत्म कर देने के लिए, मार डालने के लिए, नस्ल खत्म हो जाए हमेशा के लिए, अब्बासियों ने भी कोशिश की, बेहिसाब कोशिश की, सैकड़ों वर्षों तक चलते रहे, और बनी उमैया ने भी कोशिश की लेकिन ये सूरज का सूरज ही रहा, थूकने वाले मर खट गए। तो ये तरीका हमारा जो है ये कोई नया तरीका नहीं, इस तरीके के अंदर खुद नूर बैठा है, अल्लाह रसूल का नूर इस तरीके में बैठा है। चारे चारे युग देख लो, सारा जमाना देख लो, इस जैसा और कोई नजर आता है? ये हमारी खुशनसीबी है। इसके लिए तो पीर सदर दिन माँ बाप ने हमको तमगे दिए, मेडल्स दिए, और इन मेडल की खुशियों के अंदर ये मेडल क्या है हमारे गिनन। मैं पाठ बोलता हूं, मेरे साथ बोलो, है जी आनंद नंद कलियो की सरो शात में आ خوشیاں کرو. پہلی چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ تم نے شاہ کو پایا ہے, مولا کی شناخت و معرفت ہوئی ہے, حب و نالی ایمان, ایمان الحمدللہ ہمارے پاس ہے, علی کی محبت ہے, یہی ایمان ہے, اور علی کی محبت میں اپنی زندگی گزارنا عبادت ہے. ارے زندگی گزارنا علی کی محبت میں ٹھیک ہے, ارے علی کے چہرے پہ نظر کرنا بھی خدا کی عبادت ہے. بی بی عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہیں حضور, باتیں کر رہے ہیں, بی بی عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ حضور چند سیکنڈ چپ رہے تو سامنے سے مرتضی چلے آتے ہیں, عائشہ دیکھ اللہ کے چہرے والا آ رہا ہے, میں امرتسر کا رہنے والا ہوں, عبید اللہ مولوی امرتسر کا تھا, سنی تھا حنفی, جب پڑھتا رہا عالم شخص تھا, ریسرچ کرتا تھا, تو اس نے اتنی حدیثیں اکٹھی کی, 600 پیج کی اردو میں کتاب لکھی, مرتضی علی کی شان میں 600 پیج کی حدیثیں اس نے لکھی. وہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں, سنی بھائی بہت سے بگڑیں گے میرے اس کلیکشن کے اوپر, مگر کیا کروں, حق نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ کتاب لکھوں. 600 پیج کی ارجح المطالب مشہور کتاب ہے, منگاؤ اور پڑھو, منگاؤ اور پڑھو, اور ضرور پڑھو, لوگوں کو بھی سناؤ. ارجح المطالب, الف ر جیم ہے مطالب, 600 پیج کی کتاب میں علی کی شان میں اس نے کیا چیزیں لکھی ہیں. دل چاہتا ہے کہ ساری کتاب پڑھ کے آپ کو سناؤں, مگر وہ پوسیبل نہیں. آپ پڑھو اس کتاب کو, علی کی محبت میں سرشار رہو. یہ تمام دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں, یہ آفتیں ہیں, یہ بلائیں ہیں, علی کے نام سے دور ہوتی ہیں. شیطان دفع ہوتا ہے, ملعون دفع ہوتے ہیں, لعنتی دور ہوتے ہیں, ایول اسپرٹس بھاگ جاتی ہیں. علی کا نام لیا کرو, علی کو پکار کیا کرو, علی سے محبت کرو, علی کو یاد کرو, اس کو دل میں رکھو. حق تو پاک تو بادشاہ مہربان ہی علی, تو ہی تو. علی کے بہت سے فیسز ہیں, حسین علی ہے, زین العابدین علی ہے, محمد الباقر علی ہے, سلطان محمد علی ہے, کریم صلوات اللہ علیہ. اے مومن, اس دنیا میں خصوصی ہم جو یہ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ اس وقت کے حالات اگر دنیا کے جانتے ہو, اور ہمیں جاننا ضروری ہے, ورلڈ نیوز سنا کرو. گئے 200 برس کی یورپ اور امریکہ کی ہسٹری پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا اس وقت ساری دنیا میں جتنی بھی بدیاں برائیاں گناہ وہ امریکہ میں سے نکل رہے ہیں, واللہ باللہ امریکہ میں سے نکل رہے ہیں. یہاں کی سوسائٹی ایسی خراب ہو رہی ہے کہ پھر صدر دن کہتے ہیں کہ مومن روئیں گے کہ یا مولا اس گناہ بھرے جیون کے اندر ہم لوگ نہیں رہ سکتے, پھر بھی ہم کو مولا نے ایسے قرائے عرض کے حصے کے اوپر یہاں اکٹھا کیا ہے. آج ہم 1,00,000 اسماعیلی ہیں نارتھ امریکہ میں, اور ابو علی یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی تمام بدیاں برائیاں یہاں سے نکل رہی ہیں, اور پھر بھی ہم کو حضرت امام نے یہاں بھیجا ہے. ہاں, بہت بڑا مقصد ہے. میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے, لیکن ہوگا شاید میں 4 دن آپ کے پاس ہوں, اگر مجھے یاد آ گیا اور میری مقصد ہے. میں کہوں گا انشاءاللہ کسی دن. ہمارا فرض یہ ہے کہ مولا نے ہمیں ایک کام کے لیے بھیجا ہے ادھر. میں وہ کام بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کام ہے. ہم کو یہاں بیٹھ کے یہ ساری چیزوں کے اندر گم سم ہو جانے اور پھر وہ کام جو مولا نے ہمیں دیا ہے ادھر آ کے تو وہ تو بھول گئے. تو ہم نے مولا کی نافرمانی بھی کی, زندگی بھی برباد کی. یہ بھی سن لو کہ یہاں ہم 200-500 برس کے لیے نہیں ہیں. بہت بڑا مقصد ہے اس کے اندر کہ اس علاقے میں ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا آج سے 50-100 برس پہ, اور آج 1,00,000 ہے اور 5-10 برس میں 2,00,000 ہو جائے تو کوئی نئی چیز نہیں. اس وقت ہمارے سامنے آج کا میرا پیغام یہ ہے, علی کی محبت, علی سے پیار کرو, علی کو یاد کرو, علی کو اپنے دل میں رکھو, علی کو اپنی زبان پہ رکھو, ہر حالت میں اس کو یاد کرتے رہو. علی سے میری مراد صرف علی مرتضیٰ وہ نہیں, ہمارے ہر امام علی ہی علی ہے, اور آج علی مرتضیٰ مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے تولے کوئی نہ آئے, مولا کو آباد رکھے, سکھی رکھے, تندرست رکھے, بدیوں برائیوں سے بچا لے, شیطان کے فریب سے بچا لے, کلیجگ کی ہواؤں سے بچا لے, زمینی آسمانی آفت بلائیں دور رکھے, مولا ہر قسم کی تکلیفیں دور رکھے, آپ کو آپ کی آل اولاد کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, نافرمانی سے بچاوے, حرکتوں سے بچاوے کہ جو حرکتیں ہم کو دین سے دور کر دے. مولا آپ کو دسلم کی سکریتی بنا دے, اپنی محبت دے دے, اپنی رحمتیں دے دے, اپنی برکتیں دے دے, اپنی نعمتیں دے دے, اپنی پناہ دے دے, سکھی اور آباد.